ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने हम सब बच्चों को बताया कि बाबा को याद करना कितना सहज है। कई बच्चे बाबा को कहते हैं, बाबा भक्ति मार्ग में तो हमने ज्योति को याद किया, बड़े रूप को याद किया, लेकिन अभी बिंदु रूप को याद करना हमारे लिए मुश्किल है। जिसके लिए बाबा ने बच्चों को युक्ति बताई है कि बाबा भी बिंदी है, आत्मा भी बिंदी है। फिर बाबा ने कहा कि लौकिक में भी बच्चा जब अपने माँ बाप को देखता है तो दौड़ करके माँ बाप के पास चिपक जाता है, ये कभी नहीं कहेगा कि मैं कैसे याद करूँ, मैं कैसे याद करूँ, ये मेरे माँ बाप हैं। वो स्वतः ही याद करता है। इसके लिए बाबा ने कहा कि बच्चों को और सहज करने के लिए बाबा ने योग अक्षर ही हटा दिया। बाबा ने कहा ये याद है, तुम बच्चों को बाबा को याद करना है। और याद करने के लिए बाबा ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि बच्चों को गांठ बांध लेनी है। पहले जमाने में क्या होता था कि माताएं कभी कभी अपने पल्ले पे गांठ बांध लेती थी, तो उनको पूछते थे कि गांठ क्यों बांधी है, कि मेरे को ये काम करना है, मेरे को ये काम करना है, मैं भूल ना जाऊं, तो गांठ बांधते थे। पुरुष अपने रुमाल पे बांध देते थे। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को भी गांठ बांध देनी है कि हमें बाबा को याद करना है। फिर बाबा ने पहले से ही समय की चेतावनी देते हुए कहा कि बच्चों को क्या करना है, दाल रोटी खानी है, लालच नहीं करनी है, और पेट को क्या चाहिए, पेट भरना है। लेकिन लालच में आकर के करते हैं तो और भी मुश्किल होता है। फिर बाबा ने कहा देखो आज भी जजेस और स्कूल में टीचर हैं तो वो क्या करते हैं, पॉइंट्स लिखते हैं बहस करने के लिए, भूल ना जाए, डॉक्टर्स हैं। लेकिन यहाँ तो बाबा कितने पॉइंट्स आदि लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर देखो ब्रह्मा बाबा है। जैसे तुम बच्चे पढ़ते हो ब्रह्मा बाबा भी पढ़ता है, तो पेंसिल आदि लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बाबा को याद करना है। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 19 मई 2026, मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भाव, चलते फिरते उठते बैठते यही अभ्यास करते रहो, तुम्हारी बहुत उन्नति होती रहेगी। कौन सा अभ्यास, आत्म अभिमानी बनने का। मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भव, चलते फिरते उठते बैठते यही अभ्यास करते रहो, तो तुम्हारी बहुत उन्नति होती रहेगी। आज का प्रश्न है, बाप की एक्यूरेट याद किन बच्चों की बुद्धि में रहेगी। बाप की एक्यूरेट याद किन बच्चों की बुद्धि में रहेगी? उत्तर है, जिन बच्चों ने बाप को एक्यूरेट जाना है। कई बच्चे कहते हैं बिंदु को भला कैसे याद करें, अभी भी कहते रहते ना बाबा की याद भूल जाती है, क्या करें। तो बाबा ने एक तरीका बता दिया, पहले करना आत्म अभिमानी बनना है, फिर बाबा को याद करेंगे तो बिंदु को भी याद कर सकेंगे। जिन बच्चों ने बाप को एक्यूरेट जाना है, परंतु कई बच्चे कहते हैं बिंदु को भला कैसे याद करें, भक्ति में तो अखंड ज्योति समझ याद करते आए, अभी बिंदु को कैसे याद करें, बिंदु कहकर मूंझ जाते हैं। इसलिए पहले पहले ये निश्चय करो कि बाप अखंड ज्योति नहीं। भक्ति में बताते ना कि वो अखंड ज्योति है। बाबा कहते बाबा का जो रूप है वो अखंड ज्योति नहीं है, बिंदु स्वरूप है, लेकिन उसमें बहुत शक्ति है। इसलिए पहले पहले निश्चय हो कि बाप अखंड ज्योति नहीं है, वह तो अति सूक्ष्म बिंदु है, तब याद एक्यूरेट रह सकती है। ओम शांति। सभी बच्चे याद में बैठे हैं। बाबा आते थे, पूछते थे, सभी बच्चे बाबा की याद में बैठे हैं। सभी बच्चे याद में बैठे हैं। मन मना भव, ये संस्कृत अक्षर वास्तव में है नहीं। गीता में मन मना भव लिखा है। बाबा कहते बाबा क्या कहते हैं, बाबा को याद करो। बाप ने जब सहज राजयोग सिखाया है तब ये संस्कृत शब्द अक्षर बोले नहीं। बाबा ने जब ज्ञान दिया तो ज्ञान कोई संस्कृत में नहीं दिया, कोई दूसरी भाषा में नहीं दिया है। बाप ने जब सहज राज सिखाया है तब ये संस्कृत अक्षर बोले ही नहीं है। ये तो संस्कृत जानते ही नहीं है। अब ब्रह्मा बाबा तो कहाँ जानते जो संस्कृत, तो ऐसे भी बच्चे भी कहाँ जानते। कोई कोई है जो पढ़े हुए थोड़ा बहुत, और वो भी इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज है। तो बाबा कहते हैं ये तो संस्कृत जानते ही नहीं है, बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। भल ये रथ हिंदी सिंधी तथा इंग्लिश जानने वाला। साकार में बाबा हिंदी भी जानते थे, सिंधी होने के कारण सिंधी मातृभाषा थी, और इंग्लिश भी जानते थे क्योंकि बाबा का पूरे भारत और राजाओं महाराजाओं से कनेक्शन था, वीआईपी से कनेक्शन था, तो इंग्लिश भी जानते थे। भल ये रथ हिंदी सिंधी तथा इंग्लिश जानने वाला है, परंतु बाप समझाते हिंदी में है। जो जिस धर्म का है उनकी अपनी भाषा है, यह हिंदी भाषा ही चलती है। बाबा हमेशा कहते थे हिंदी में समझाओ। शुरू शुरू में बहने जो थी तो सिंधी में बात करती थी, तो बाबा उनको पक्का करते थे भाषण भी हिंदी में करना है और कारोबार भी हिंदी में ही बात करनी है, ताकि वो पक्का हो। तो बाबा कहते हैं जो जिस धर्म का उनकी अपनी भाषा है, यह हिंदी भाषा ही चलती है। ये भाषा समझाना सहज है, और ये स्कूल भी वंडरफुल है। है ऐसा, कितना वंडरफुल स्कूल है। इसमें कोई भी कागज पेंसिल पन्ने आदि की दरकार नहीं रहती है। दरकार लिखना जरूरी भी है। शुरू शुरू में जब हैदराबाद सिंध में थे उस समय दादियां बहुत सारी पॉइंट्स आदि लिखती रहती थी, डायरी में लिखते थे। बाबा ने दोनों युक्ति बताई थी। बाबा ने कहा था लिखो तो याद रहेगा, जब भूल जाओगे तो लिखी हुई चीज को याद रहोगे, लेकिन फिर उसमें स्टिक ना हो जाए। कई बार कई बच्चे क्या जो लिख लिया ना, कहते मैंने लिख लिया है, प्रैक्टिस नहीं करते। तो इसलिए बाबा को कहना पड़ता है पेन पेंसिल कागज की दरकार नहीं है। आप सबको कहानी तो सुनी हुई है ना, इतने किताबें थी, इतनी लिखी हुई किताबें, इतनी मुरलियां थी। जब भारत आने लगे तो बाबा ने क्या कहा, इसको अंदर धरती में जम गाड़ दो, ताकि समय आने पर वही आगे चल करके द्वापुर में काम आएंगे। तो बाबा कहते हैं ये स्कूल भी वंडरफुल है, इसमें कोई भी कागज पेंसिल पन्ने आदि की दरकार नहीं रहती। यहाँ तो सिर्फ एक अक्षर को याद करना है, अर्थात बाप को याद करो। गॉड को अथवा ईश्वर को अथवा परम पिता परमात्मा को कोई याद कर न सके। भल वो अपने रीति से पुकारते हैं लेकिन याद नहीं करते, पुकारते जरूर है, बुलाते जरूर हैं। तो बाबा कहते हैं गॉड को अथवा ईश्वर को अथवा परम पिता परमात्मा को कोई याद कर न सके, ये मुश्किल है। याद सभी करते हैं परंतु उनको पहचान नहीं है। बाप ही आकर के अपनी पहचान देते हैं। शास्त्रों में जो कलप की आयु इतनी लंबी लिख दी है, वह बाप आकर के समझाते हैं, बहुत बड़ी बात भी नहीं है, वो तो लाखों करोड़ों वर्ष कह देते ना, तो बाबा कहते ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अल्लाह कुब्जाएं बूढ़ी बूढ़ी माताएं क्या समझेंगे, ये तो बहुत ही सहज है। बाबा के पास बूढ़ी माताएं आती थी ना, बाबा कहते कुछ नहीं करो, वो तो बस बाबा बाबा मीठा बाबा कहते, बूढ़ी की पॉइंट समझे या न समझे, बस बाबा को देखा बाबा की बन जाती थी। तो बाबा कहते अल्लाह कुब्जाएं जो है उनके लिए बाबा को याद करना बहुत सहज है। अल्लाह बूढ़ी बूढ़ी माताएं क्या समझेंगे, ये तो बहुत ही सहज है, कोई छोटे बच्चे भी समझ सकते। मीन्स बड़ी बड़ी गहरी बातें संस्कृत की बातें तो अल्लाह कैसे समझेंगे, बाबा को याद करना है छोटे बच्चे भी और ये समझ सकते हैं। बाबा अक्षर कोई नया नहीं है, शिव के मंदिर में जाते हैं तो बुद्धि में आता है कि ये शिव बाबा है, वह निराकार है, सभी मनुष्य मात्र बाबा कहते। वहाँ भी जाते हैं मंदिरों में तो भगवान को बाबा कहते ना, सभी मनुष्य मात्र बाबा कहते हैं, हम सर्व आत्माओं का बाप एक है, सब जीव की आत्माएं जो शरीर में निवास करती हैं बाप को याद करती हैं, सब धर्म वाले जो भी हैं परम पिता परमात्मा को याद जरूर करते हैं, वह परम धाम में रहने वाला, हम भी वहाँ के रहने वाले हैं, अब सिर्फ बाप को याद करना। बाबा भी कहाँ रहते हैं, परम धाम में रहते हैं। कुछ दिन पहले बाबा ने कहा ना, बाबा को कहाँ याद करना, परम धाम में भी याद करो, रहने वाला वहाँ का है, बल वो थोड़े समय के लिए आता है और हम भी वहाँ रहने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं वह परम धाम में रहने वाला है, बाप है, हम भी वहाँ के रहने वाले हैं, तो अब सिर्फ बाप को याद करना है। चाहते भी हैं कि हम पावन बने, बुलाते भी हैं हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ, नई दुनिया पावन थी अब फिर पुरानी हुई है, इनको कोई नया नहीं कहेंगे। अब बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, न्यू बम्बई बना दिया, न्यू दिल्ली बना दिया, बाबा कहते कितना भी बना लो लेकिन इसको नया भारत तो नहीं कहेंगे ना, वहाँ पर तो और ही ज्यादा नई नई चीजें बनाते हैं, कितना अडल्ट्रेशन भी होता है। तो बाबा कहते इनको कोई नया नहीं कहेंगे, भारतवासी जानते हैं नए भारत में देवी देवताओं का राज्य था, देवी देवताएं राज्य करते थे, जब नया भारत था तो उसके आगे क्या था। तो बाबा कहते लोग आते पूछो समझने वाले, बोले जब भारत नया था उसके आगे क्या था, उनको कुछ पता ही नहीं है उसके आगे क्या था। तो बाबा कहते हैं संगम, इससे भी सहज कहना चाहिए, इसके आगे पुराना था। उनको अगर हम कहें ना संगम था तो वो नहीं समझेंगे, पहले बोलो अभी नया भारत, इससे पहले पुराना था, और जो बीच का टाइम था वो संगम था। संगम को मनुष्य इतना सहज समझ नहीं सकते, न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड इसके बीच को फिर संगम कहते। अब समझाना क्या है, न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड और इसके बीच को संगम कहते हैं। बाप के लिए ही कहते हैं हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ, हम पतित बन गए हैं, नई दुनिया में कोई भी पुकारेंगे नहीं। उनको ये भी पता नहीं है कि हमारा भी बाबा परम पिता है, उसने हमको ये राज्य दिया है, वो तो जानते ही नहीं है। बाबा कभी कभी बच्चों को लेना देते ना, बच्चे इतने वंडरफुल है, नई दुनिया में गए बाबा को भूल जाते। बाबा को ये भी नहीं कहते कि बाबा आओ हम कैसे रहते, बाबा को बुलाओ फिर बाबा क्या कहेंगे, मेरा ड्रामा में पार्ट ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं नई दुनिया में कोई पुकारेंगे नहीं, अभी तुम्हारी समझ में आ गया है कि ये भारत पावन था, हे पतित पावन आओ, ये तो बहुत समय से बुलाते आए हैं, उनको ये पता ही नहीं पतित दुनिया कब पूरी होगी। कहते हैं शास्त्रों में ऐसे लिखा है अभी 40,000 वर्ष और कलयुग पतित दुनिया चले, अब वो शास्त्रों की बात को रेफर करते, पहले करते थे लेकिन अभी तो समझ रहे हैं ना कि दुनिया की हालत क्या हो गई है, बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है। अभी तुम रोशनी में हो, बाप ने तुमको रोशनी में लाया है। ये 5000 वर्ष में सृष्टि का चक्र पूरा होता है। कल की तो बात है ना, तुम ही तो राज्य करते थे। बाबा कहते 5000 वर्ष कौन सी बड़ी बात है, कल की बात है, तुम राज्य करते थे। बरोबर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था और स्वर्ग था। बाबा देखो कितना सहज रीति से याद करा रहे हैं, बता रहे हैं। पावन दुनिया में कोई भी उपद्रव आदि हो नहीं सकता। अभी तो क्या क्या होता है, कहाँ बारिश आ जाएगी, कहाँ एकदम गर्मी, कहाँ आंधी तूफान, कई प्रकार के उपद्रव होते ना। तो बाबा कहते हैं पावन दुनिया में कोई भी उपद्रव आदि हो नहीं सकता। उपद्रव होता ही है रावण राज्य में। यहाँ तुमको बाप समझाते हैं और तुम कैसे सुनते हो, बाबा कहते तुम सन्मुख कानों से सुनते, बाबा के सामने बैठे हैं और बाबा सुनाते हैं, प्यार से सुनते हैं, बाबा को देखते हैं। यहाँ तुम सन्मुख कानों से सुनते हो, कौन सुनती है, कौन सुनती है, आत्मा। आत्मा को बड़ी खुशी होती है कि हमको बाप फिर से आकर मिला। बाबा के बनते तो कितनी खुशी होती है कि बाबा हमको मिला, बाबा को पुकारते थे, बाबा हमको मिला, और बाबा को खुशी होती बच्चों को देखकर, ये मेरे कलम पुराने वाले बच्चे आकर के मिले हैं। तो बाबा कहते हैं आत्मा को बड़ी खुशी होती है हमको बाप फिर से आकर मिला है। बाप से वर्षा लिया था, अब बाप कहते हैं मुझे याद करो। इसमें कोई लिखने पढ़ने की बात नहीं, याद में तो नहीं लिखना होता है ना, याद में तो कोई नहीं लिखता है। लेकिन एक वंडरफुल बात बताते हैं। वंडरफुल बात क्या है, बाबा के बच्चे इतने वंडरफुल हैं, बाबा के कमरे में जाते वहां लिखने लग जाते। वहां बाबा के कमरे में जाकर के किसको कुछ भी नहीं लिखना है। अगर किसको बाबा को पत्र लिखना, पहले से लिख के लाओ और बाबा के कमरे के बाहर जो लेटर लिखा लेटर बॉक्स उसमें डालो। और फिर दूसरे अभी भी जाएंगे ना शांति संपर्क, कोई बैठे हैं मुरली सुन रहे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, या तो मोबाइल ऑन है या मुरली को लेके बैठे। अरे शांति संपर्क बाबा को याद करना है, मुरली पढ़नी, अभी भी कोई पढ़ रहा हो ना तो उनको शांति संपर्क के बाहर बैठाओ। वहां बैठते मुरली पढ़ रहे हैं, बाबा देख रहा है, भल ज्ञान है, लेकिन शांति संपर्क भी जब बैठते हैं तो बाबा की याद में बैठे वो अनुभव करे। बाबा के कमरे में बाबा की झोपड़ी में बैठ करके किसको पत्र नहीं लिखना है। उस समय सब योग कर रहे होते हैं, पहले भी कई बार बताया कि अमृत वेले या बाद में सबको 5-5 मिनट बाबा के कमरे में बैठना है ताकि औरों को भी चांस मिले। पत्र आदि पहले लिख के लाओ, फिर बाबा के सामने दिखा करके वो लेटर बॉक्स में डालो। तो इसलिए बाबा कहते हैं कोई इसमें लिखने पढ़ने की बात नहीं है। जब कोई आते तो पूछा जाता है कि आपका कैसे आना हुआ, तो कहेंगे हम यहाँ के महात्मा से मिलने आए। शुरू में आते थे ना, कहते थे आपके महात्मा से मिलने आए, तो बाबा कहते थे उनको कह दो यहाँ कोई महात्मा नहीं है। फिर कहेंगे अच्छा हम आपके गुरु से मिलने आए, बाबा कहते उनको कोई यहाँ कोई गुरु नहीं है, परिवार है। फिर कहते यहाँ के जो परिवार का हेड है उससे मिलने आए, बाबा कहते ये हेड ही नहीं है, सब बच्चे हैं। तो बाबा उनको ऐसा पक्का करा देते थे। तो बाबा कहते हैं कहेंगे यहाँ के महात्मा से मिल जाए, क्यों तुमको क्या चाहिए, महात्मा से मिलके तुम्हें क्या चाहिए बताओ, कोई कैसे आना हुआ। कोई कहेंगे क्या तुमको भिक्षा चाहिए क्या, बाबा कहते उनसे पूछो तुम लोग क्यों आए बताओ, क्या कैसे आना हुआ। तो कहेंगे यहाँ के महात्मा से मिलने, क्यों तुमको क्या चाहिए बताओ, कोई भिक्षा चाहिए, सन्यासी हो तो रोटी टुकड़ा चाहिए। पहले होता था, अभी तो नहीं है, पहले आते थे, भिक्षा मांगने आते थे तो बाबा कहते उनको दे दो। और सन्यासी किसके पास जाते हैं, वह रास्ते में मिलते हैं तो रिलीजियस मनुष्य समझते हैं ये फिर भी पवित्र मनुष्य। सन्यासी मिलते थे पहले जमाने में, इनको कुछ ना कुछ देते थे, और क्योंकि वो पवित्र भी होते थे, उनकी धारणा भी होती थी। आजकल के तो आप समझो मिक्स है ना, तो पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। तो बाबा कहते हैं उनको भोजन खिलाना अच्छा है, अभी तो पवित्रता रही नहीं है, बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया है, इसमें बड़ी गंदगी है। मनुष्य कितना हैरान होते हैं, यहाँ तो हैरान होने की कोई बात ही नहीं। दुनिया में जाओ क्या हालत है, छोटी छोटी बातों पे परेशान और हैरान होते हैं। और यहाँ बाबा के बच्चे परिस्थितियां देखते हुए समझते हैं कि ये कलब पहले ड्रामा की नूंद है। तो बाबा कहते यहाँ तो हैरान होने की कोई बात नहीं है। बाप कहते लिखने करने की भी कोई बात नहीं है, है? ये पॉइंट्स आदि भी लिखते हैं धारण करने के लिए। कई बार बाबा कहते थे लिखते तो हो, क्या रिपीट करते हो, पढ़ते हो दोबारा, क्योंकि इसको पढ़ेंगे तो फिर पक्का हो जाएगा ना। तो बाबा कहते ये पॉइंट्स आदि लिखते हैं धारण करने के लिए। जैसे डॉक्टर्स लोगों के पास कितनी दवाइयां होती हैं, इतनी सब दवाइयां याद रहती हैं, कुछ याद रहती हैं, कुछ नोट करते हैं, और आजकल तो गूगल में देख लेते हैं। बैरिस्टर की बुद्धि में कितनी लाख की बातें याद रहती है, तुमको या क्या याद करना है, इतनी बातें याद करनी है तुमको, क्या याद करना है? एक बात वो भी बड़ी सहज है, कौन सी? मैं आत्मा बिंदी, बाबा भी बिंदी। तुम कहती हो शिव बाबा को याद करो, वह कहते हैं शिव बाबा कैसे याद आएंगे, ये भी तुम्हारे सिवाय और किसको भी पता नहीं कि ईश्वर कहाँ है। वह तो कहेंगे कि नाम रूप से न्यारा है, या फिर कह देते सर्वव्यापी, दोनों अपोजिट, एक तरफ नाम रूप से न्यारा है, दूसरी तरफ कहते सर्वव्यापी है। रात दिन का फर्क हो जाता है दोनों अक्षर में, कौन सा? नाम रूप से न्यारा और सर्वव्यापी। नाम रूप से न्यारा तो कोई चीज है ही नहीं, फिर कह देते कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा है, दोनों एक दो के अपोजिट बातें हो गई। अब बाप अपना परिचय देते हैं, कहते हैं मुझ बाप को याद करो। गाया भी जाता है सहज राजयोग, बाबा कहते हैं योग का अक्षर निकाल दो। बाबा ने क्या बताया, कहा योग कहते हैं ना, योग का अर्थ बोलते ही लोग तो समझते हैं बिल्कुल ऐसे बैठना, ऐसे करना, एक्सरसाइज करना, वो फिजिकल योग है। लेकिन बाबा कहते योग के अक्षर को निकाल दो, याद शब्द कहो। बाबा कहते हैं योग का अक्षर निकाल दो, याद करो। जैसे छोटा बच्चा माँ बाप को देखने से ही झट गले लग जाता, ऐसे थोड़ी बार खड़ा रहेगा बाबा को याद करूँ, अपने पिता को याद करूँ, माँ को याद, देखते हुए पहुंच जाएगा, फटाफट उनकी गोदी में चला जाता। तो बाबा कहते हैं जैसे छोटा बच्चा माँ बाप को देखने से झट गले लग जाता है, पहले सोचेगा क्या कि ये मेरे माँ बाप हैं? कई बार बच्चों को बुलाते हैं ना, वो बच्चे छोटे होते बुलाओ बुलाते आओ, तो फटाफट इधर आने के बजाय अपने माँ बाप के पास चले गए, उनको पकड़ लेंगे, उनको डर लगता है कि माँ बाप का हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो सोचे, पहले सोचेगा क्या कि हमारे माँ बाप हैं या नहीं है? इसमें सोच करने की बात ही नहीं, तुम्हें भी सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। भक्ति मार्ग में भी तुम शिव पर फूल चढ़ाते आए हो, बहुत फूल चढ़ाए, सबसे ज्यादा फूल किसने चढ़ाए? बाबा के बच्चों ने चढ़ाए, भक्ति भी सबसे ज्यादा बच्चों ने की है। भक्ति मार्ग में तुम शिव पर फूल चढ़ाते आए हो। सोमनाथ का मंदिर कितना भारी बनाया हुआ है, जो बाद में मोहम्मद गजवी ने आकर लूटा। वो ऐसा मंदिर था जिसके अंदर सबसे ज्यादा खजाना था, और वो सारा का सारा खजाना मोहम्मद गजनी ले गया, लूट गया। कितनी बार आया, 17 बार अटैक किया और वो हर समय हार जाता था, लास्ट में जाकर के सारा लूट गया। तो बाबा कहती हैं, जो बाद में मोहम्मद गजनी ने आकर लूटा था, सोमनाथ का मंदिर भारत में नामी ग्रामी है। सबसे पहले तो शिव की पूजा होनी चाहिए। बच्चों को ये सब नॉलेज अब बुद्धि में आई है, सारा ज्ञान आ गया ना, पहले तो समझते नहीं थे, बाबा ने बताया। बच्चों को ये नॉलेज अब बुद्धि में आई है, भाई पूजा आदि करते आए हो परंतु तुमको ये पता ही नहीं था कि ये जड़ चेतन है। बच्चों ने पूजा की, बहुत कुछ किया, लेकिन ये पता ही नहीं था कि जड़ चित्र है, हम किसकी पूजा कर रहे हैं। तो बाबा ने भी रहस्य बताया है, जो चैतन्य में आया होगा तब तो वर्ष वर्ष शिव जयंती भी मनाते हैं। ये भी कहते हैं शिव परमात्मा निराकार, गीता में लिखा ना, मैं ज्योति स्वरूप बिंदु स्वरूप निराकार हूँ। तो इसलिए बाबा कहते हैं, ये भी कहते हैं शिव परमात्मा निराकार है, आत्मा जानती है हम भी निराकार हैं। अभी तुम आत्म अभिमानी बनते हो, बहुत सहज है, वह तो हमारा बाबा है। अब कितना सहज, बाबा कहते पक्का करो, कितना सहज है, शिव बाबा कौन है, वह तो हमारा बाबा, बाबा मीन्स फादर, पिता है, वह तो हमारा बाबा है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, पतित पावन है, उनकी महिमा बहुत है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की इतनी महिमा नहीं है, एक की ही महिमा गाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा आकर हमको वर्षा देते, बाबा से मिले, बाबा ने अपना बनाया और बाबा हमको वर्षा देते हैं। जैसे लौकिक बाप बच्चों का लालन पालन करते हैं, पढ़ाते नहीं हैं, पढ़ाई के लिए स्कूल में जाते हैं, फिर वानप्रस्थ में गुरु किया जाता है। अब बाबा ने राज क्या बताया कि लौकिक में माँ बाप लालन पालन करेंगे, स्कूल के लिए टीचर पढ़ाएगा और वानप्रस्थ के लिए गुरु करेंगे। यहाँ तो तीनों ही बातें, बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। आजकल तो छोटे बड़े सबको गुरु करा देते हैं, यहाँ तो तुम बच्चों को कहा जाता है शिव बाबा को याद करो। सबका हक है, किस चीज का हक है, बाबा को याद करना और बाबा से वर्षा लेना, सबका हक है, बाबा को याद करो। सब मेरे बच्चे हैं, तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति याद करते, फिर बाबा सर्टिफिकेट दे रहे, कई है जो बहुत अच्छी रीति याद करते, कई तो कहते बाबा किसको याद करें, देखो कैसी हो, बाबा के सामने बैठे और बाबा को कह रहे हैं बाबा किसको याद करें, कितनी अच्छी बात है कि है बाबा सामने और बाबा को बात कर रहे, किसको याद भी कर रहे, फिर पूछते बाबा किसको याद करें, अरे बिंदी को कैसे याद करें, फिर पूछते बिंदी को कैसे याद करें। बड़ी चीज हो, बड़ी चीज को तो झट याद किया जाता है, भक्ति में भी तो बड़ी बड़ी चीजें याद करते हैं ना, तो बाबा कहते बड़ी चीज को झट याद करते हैं, यहाँ जो याद है इतनी सूक्ष्म है, बिंदी को याद करना है, खुद भी बिंदी, बाबा भी बिंदी, बड़ी चीज को याद किया जाता है। अच्छा, परमात्मा जिसको तुम याद करते हो वह क्या चीज है, तो कह देते अखंड ज्योति स्वरूप। भक्ति में यही देखा ना, सुना भी यही, प्रैक्टिस भी यही किया कि वो अखंड ज्योति स्वरूप है, तो वो आदत पड़ी हुई है, तो बाबा को भूल जाते, फिर बाबा से पूछते बाबा कैसे याद करें, परंतु ऐसी है नहीं, अखंड ज्योति को याद करना रॉन्ग हो जाता। अब बाबा बच्चों के लिए करेक्शन कर रहे हैं कि बाबा को कैसे याद करना है, वो भक्ति का संस्कार नहीं। अभी भी कईयों में भक्ति का संस्कार होगा, आएंगे पांव छुएंगे, सिर झुकाएंगे, बाबा कहते बाबा के बच्चे हैं तो नशे में रहे, हम बाबा के बच्चे हैं, सिर आदि चुकाने की जरूरत ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं अखंड ज्योति को याद करना रॉन्ग हो जाता, याद तो एक्यूरेट चाहिए, पहले एक्यूरेट जानना चाहिए, एक्यूरेट याद के लिए पहले एक्यूरेट जानना और परिचय चाहिए। बाप ही आकर के अपना परिचय देते हैं, फिर बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार भी सुनाते हैं, डिटेल में तो नटशेल में भी, दोनों शॉर्ट में भी और डिटेल में दोनों प्रकार से बताते हैं। डिटेल में सृष्टि का पूरी कहानी सुनाते हैं, शुरू में क्या था, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। शॉर्ट में क्या बताते हैं, तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो और बाबा को याद करो। डिटेल में भी तो और शॉर्ट में भी। अब बाप कहते हैं बच्चे तुमको पावन बनना है तो उसके लिए एक ही उपाय है, मुझे याद करो, मुझे कहते आए हो पति पावन, आत्मा को पावन बनाना है। आत्मा ही कहती है हम पतित बन गए, बनाना किसको पावन है, आत्मा को। आत्मा ने कहा हम पतित बन गए हैं, हम पावन थे अब पतित हैं, सब तमो प्रधान है, हर एक चीज पहले सतो प्रधान, फिर पूरी नहीं रहती, धीरे धीरे फिर तमो प्रधान होती है। आत्मा खुद कहती है मैं पतित बनी हूँ, मुझे पावन बनाओ। शांति धाम में पतित होते ही नहीं है, यहाँ ही पतित है तो दुखी है। शांति धाम में तो बिल्कुल प्योर, एक भी पतित अंश वाला भी वहाँ नहीं जा सकता, और उसके लिए अपने पतित पने की सजा खा करके जाते हैं। तो बाबा कहती हैं शांति धाम में पतित होते ही नहीं, यहाँ पतित हैं तो दुखी हैं, जब पावन थे तो सुखी थे। तो आत्मा कहती है हमको पावन बनाओ तो हम दुख से छूट जाएं। तुम्हें समझते हो आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा ही जज बैरिस्टर आदि बनती, आत्मा ही सब कुछ बनती है, जज भी बैरिस्टर आदि बनती। आत्मा ही कहती है मैं राजा हूँ, मैं फलाना हूँ, अभी ये शरीर छोड़ दूसरा लेना है। इसको कहा जाता है आत्म अभिमान। अब ये सब कौन कहेगा जिनको ज्ञान है, बाहर वाले तो नहीं कहेंगे ना, भले वो आत्मा का गायन करते हैं पढ़ते हैं, लेकिन ये थोड़ी कहेंगे मैं आत्मा हूँ, मैंने ये चोला लिया है। वो तो कहेगा मैं जज हूँ, वकील हूँ, मैं ये हूँ, मेरी पोस्ट ये है। तो बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है आत्म अभिमानी, देह होते भी आत्म अभिमानी। रावण राज्य में देह अभिमानी होते हैं, आत्म अभिमानी अभी ही बाप बना। पूरे कलप के अंदर आत्म अभिमानी ने, सच्युग त्रेता में भल आत्म अभिमानी है लेकिन परमात्मा का ज्ञान नहीं है, फिर द्वापर से देह अभिमानी हो जाते हैं, लेकिन आत्म अभिमानी देही अभिमानी बाप ही बनाते। इस समय आत्मा पतित दुखी है तो पुकारती है हे बाबा आओ। ये भी तुम जानते हो कौन सी बात, ड्रामा प्लान अनुसार पतित से पावन, पावन से पतित बनते आए हैं। चक्र तो फिरता ही रहता है, अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा, क्या बैठा है, हम पावन थे, राज्य करते थे, बहुत सुखी थे, अभी पतित हो गए, दुखी बन गए, फिर से वही पावन बनेंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा है हमारे 84 जन्म कैसे हुए हैं, ये बात तुम अभी ये बात भूलो मत, हमने 84 जन्म कैसे लिए, हमारे 84 जन्म कैसे हुए, अभी ये बात भूलो मत। स्वदर्शन चक्रधारी होके। बाबा ने और क्या बोला, बाबा को याद करो और स्वदर्शन चक्रधारी होके रहो। उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में हमको सारी नॉलेज है। तुम समझते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं तुमको क्या करना है, तुमको एक बाप को ही याद करना है। बाप को याद करना है और रोटी टुक्कर खाना। बताओ, पहले से ही बाबा ने बता दिया बच्चों का काम क्या है, बाबा को याद करो और शरीर निर्वाह अर्थ फिर क्या है, बाबा ने कहा सिंपल रहना, वो भी बाबा ने बताया है, बाप को याद करना, रोटी टुकड़ खाना, बस मीठे मीठे सिक्के लदे। बच्चों को बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे पेट के लिए सिर्फ रोटी टुकड़ा खाना है। उस समय से बाबा ने पक्का करा दे। शुरू में बाबा ने बच्चों को इतना अच्छी तरह से खातरी करके शाही भोजन खिलाते रहे, फिर बाबा ने बच्चों को देही अभिमानी बनाने के लिए बिल्कुल साधारण भोजन भी खिलाया, फिर बाबा ने नष्ट मोह बनने के लिए, बाबा ने कहा पेट को क्या चाहिए, पेट को भरना है और शरीर को चलाना है तो चाहिए क्या। बच्चे पेट के लिए सिर्फ रोटी टुकड़ा खाना, पेट कोई जास्ती नहीं खाता, कोई कितना भी जास्ती खा ले फिर कहेगा इनडाइजेशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो जो लिमिट है उसी से ही खा सकते ना, कितना भी होगा, थोड़ी सी चीज भी एक्स्ट्रा खा लेते हैं तो मुश्किल होता है। तो बाबा कहते हैं नियम अनुसार जो पेट को चाहिए उतना ही खाता है ना, कोई जास्ती खाता नहीं है, एक पाव आटे का खाता है, कितनी खाएगा, दो रोटी खाएगा तो कोई तीन खाएगा, कोई हार्ड वर्क कर तो थोड़ा ज्यादा खा लेगा। तो बाबा कहते एक पाव आटे की रोटी खाता है, दाल रोटी बस 10 रुपए में ही मनुष्य पेट भरता। उस समय 10 रुपए की बहुत वैल्यू थी, 10 रुपए भी बहुत ज्यादा उसकी कीमत थी। अभी तो बाबा ने कहा ना, बाबा तो क्या करते हैं, ये कहानी बाबा क्यों बोल रहे हैं, बाबा ने अव्यक्त मुरली में भी बताया कि समय आएगा और समय आने पर दुनिया में क्या क्या होगा, लेकिन बाबा के वो बच्चे जो निश्चय बुद्धि होंगी, जिनका बाबा से प्यार होगा, उनको दाल रोटी मिलेगा ही, वो तो मिलेगा ही, लेकिन बच्चों को पहले से ही नष्ट मोह बनना है और लालच नहीं रखनी है, ये भी अभ्यास करना है। तो बाबा कहते हैं दाल रोटी बस 10 रुपए में है, पेट कोई जास्ती खाता नहीं है, एक पाव आटे का खाता है, दाल रोटी बस 10 रुपए में ही मनुष्य पेट भरता है तो 10,000 में भी पेट भरता। कईयों को देखो तो वैरायटी खाना, ये चाहिए वो चाहिए, खा तो लेंगे फिर उसके बाद क्या करते, वो तो पता है ना। तो 10,000 में गरीब लोग खाते भी क्या है, फिर भी हट्टे कट्टे रहते। अब जो पेट को चाहिए वो खाते फिर भी वो मजबूत रहते हैं ना, गरीब लोग खाते भी क्या है फिर भी हट्टे कट्टे रहते हैं। भिन्न चीजें मनुष्य खाते हैं और ही बीमार पड़ जाते हैं। डॉक्टर लोग भी कहते हैं एक प्रकार का खाना खाओ, डॉक्टर भी राय देते हैं, सुबह के टाइम ये खाओ, दिन को ये खाओ, अलग अलग ऐसे नहीं करो, मिक्स नहीं करो, ये चीज इसके साथ मिक्स नहीं करो। तो बाबा भी बता रहे हैं, डॉक्टर लोग भी कहते हैं एक प्रकार का खाना खाओ तो बीमार नहीं होंगे। तो बाप भी समझाते हैं रोटी टुकर खाओ। बाबा क्या, बाबा तो अभी भी कितना भरपूर करते हैं, वैरायटी खाने से बच्चों को भरपूर करते हैं, लेकिन बच्चों को लालच नहीं होनी चाहिए। कई बार कोई अच्छी चीज होगी ना, उसको लेंगे फिर दो उठा के भी ले जाएंगे, बाद में खाएंगे। तो बाबा कहते ऐसा नहीं करना है। बाबा कहते हैं तो बाप भी समझाते रोटी टुकर खाओ, जो मिले उसमें खुश रहो, दाल रोटी जैसी और कोई चीज होती नहीं। दाल रोटी से पेट तो भर लेते हैं ना, और कितना भी खा लो, कितनी चीजें खा लो, कहेंगे आज तो रोटी खाई नहीं है, क्योंकि वो तो जरूरत की चीज है ना। तो बाबा कहते दाल रोटी जैसी और कोई चीज होती नहीं, जास्ती लालच भी नहीं रहनी चाहिए। सन्यासी लोग क्या करते हैं, घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं, तत्व को परमात्मा समझ याद करते हैं, समझते हैं कि ब्रह्म में लीन हो जाए, परंतु ऐसे होता नहीं है। उन्होंने तत्व को ही भगवान मान लिया ना, और समझते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाबा उसको स्पष्ट कर रहे हैं, परंतु ऐसे होता नहीं, आत्मा तो अमर है, लीन होने की बात ही नहीं है। बाकी आत्मा पवित्र और अपवित्र बनती है। तुमको कितना अच्छा ज्ञान मिला है, आत्मा का ज्ञान मिला, बाबा का ज्ञान मिला, ड्रामा का ज्ञान मिला, तो बाबा कहते तुमको कितना अच्छा ज्ञान मिला, तुम ही प्रारब्ध भोगते हो। फिर ये ज्ञान भूल जाते, सतयुग में जाएंगे बहुत सुखी होंगे, ये भूल जाएंगे कि बाबा ने ज्ञान दिया। प्रारब्ध में इतने मस्त हो जाते हैं कुछ भी याद नहीं रहता है। तुम ही प्रारब्ध भोगते हो, फिर ये ज्ञान भूल जाता है, फिर सीढ़ी उतरनी होती है। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान बैठा हुआ है, हम 84 जन्म कैसे भोगते हैं, ये पाठ कभी भी कोई का बंद नहीं होता। 84 जन्म वाली आत्मा हो चाहे 80 वाली हो, सभी का पाठ चलता बंद नहीं होता है। ये बना बनाया ड्रामा है जो फिरता ही रहता है। ये कह नहीं सकते कि भगवान ने कब कैसे कहाँ बैठ बनाया। पूछते ना, भगवान ने ड्रामा क्यों बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया, क्यों बैठ के बनाया। बाबा कहते इसका कोई प्रश्न पूछ ही नहीं सकते हैं। नहीं, ये तो चलता ही आता है। अब ग्रामोफोन रिकॉर्ड है, बीच में सुई लगेगी, बीच में लगाया तो चलता ही रहेगा, अंत तक चलता रहेगा ना। तो बाबा कहते चलता ही आता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। इन बातों को कोई समझते ही नहीं है, कितना भी समझाओ उनकी बुद्धि में बाबा कहते बैठता नहीं है। इन बातों को कोई समझते ही नहीं है। तुम जानते हो, कौन सी बात जानते हो, तो बाबा बता रहे हैं कि तुम जानते हो हम ड्रामा प्लान अनुसार आए हैं, अब फिर से ड्रामा अनुसार राज्य ले। ड्रामा प्लान अनुसार आए, राज्य किया, अब फिर ड्रामा प्लान अनुसार फिर से राज्य ले रहे। ये बातें और कोई समझ नहीं सकते, कितना भी बताओ कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, ड्रामा में ऐसा पार्ट था, ये है, बिल्कुल नहीं समझते। केवल तुम बच्चे ही समझते हो। पूछा जाता है ड्रामा सर्वशक्तिमान है वा ईश्वर, तो लोग क्या कहेंगे, वो लोग कहेंगे भगवान सर्वशक्तिमान है। क्या क्या बोलते हैं, कहते हैं ईश्वर सर्वशक्तिमान है, समझते हैं वह सब कुछ कर सकता। अब बाबा उसको स्पष्ट करें, परंतु बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हूं, मैं भी ड्रामा के बंधन में हूं, ड्रामा में जो सीन हो वही करूंगा और मैं कुछ नहीं करता हूं। दुनिया वाले क्या कहते हैं, वो कहते ईश्वर सर्वशक्तिमान है, समझते वह सब कुछ कर सकता है। बाप कहते मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं, पतितों को पावन बनाने मुझे आना पड़ता है, तुम सतयुग में सुखी बन जाते हो, फिर मैं क्या करता हूं, मुझे तो बुलाते नहीं हो। फिर बाबा कहते मैं भी जाकर विश्राम होता हूँ परम धाम, मैं भी जाकर विश्रामी होता हूँ परम धाम में, तुम सिर कुल्ले चढ़ जाते हो, तुम्हारी शेर पर सवार। सिर कुल्ले समझते हैं ना, जैसे कोई बहुत बड़ा होता है कहते इसको सिर बहुत ऊंच बन जाते हो, तो बाबा कहते हैं तुम सिर कुल्ले चढ़ जाते। जो लाडला होता है बाप क्या करता है, उसको कंधे पर बिठाएगा फिर सिर पर बिठाएगा। तो बाबा कहते तुम बच्चे कितने लाडले हो, शिव बाबा क्या करता है, सिर कुल्ले बिठा के विश्व की बादशाही दे देता है। तुम्हारी शेर पर सवारी है। आप बताओ किनकी? भाइयों की शेर पर सवारी है, बहनों की तो दिखाते हैं, भाइयों की है कि नहीं? बाबा कहते तुम्हारी शेर पर सवारी है, तुम जानते हो सेकंड बाय सेकंड जो भी चलता है वह ड्रामा की नींद है। तुम बच्चों को कितनी अच्छी नॉलेज है, अब सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो, बस कागज पेंसिल आदि की कोई दरकार ही नहीं है। दरकार दरकार है भी, और बाबा कहते पक्के भी रहो, लिखो भी, लेकिन अभ्यास करो। बाबा कहते कागज पेंसिल आदि की कोई दरकार नहीं। ब्रह्मा बाबा भी पढ़ते हैं, ये तो कुछ भी रखते नहीं है। अब साकार में बाबा जब मुरली चलाते थे, कोई सोचते थे जरूर बाबा कुछ पढ़ के आए होंगे, बाबा के पास तो कुछ था नहीं। बाबा तो केवल बच्चों को पत्र लिखते थे, वो भी पत्र उनके पास चले जाते थे, बाबा थोड़ी अपने पास रखते थे। तो बाबा तो कुछ भी अपने ज्ञान से पहले बाबा ने डायरी रखी, लेकिन बाद में तो नहीं रखी ना। तो बाबा कहते ब्रह्मा बाबा भी पढ़ते हैं, ये तो कुछ भी रखते नहीं, सिर्फ बाप को याद करना है तो वर्षा मिलेगा। कितना सहज है, याद से तुम एवर हेल्दी बनेंगे। ये है धारणा की बात। कौन सी बात? कि बाबा को याद करना है, याद से ही एवर हेल्दी बनेंगे। ये है धारणा की बात। लिखने से क्या फायदा होगा? ये तो सब विनाश हो जाए। लिखी हुई चीजें सब जो भी है चली जाएंगी, लेकिन जो लिखा है उसको धारण कर रहा है। तो बाबा ये नहीं कहते नहीं लिखो, लेकिन बाबा बैलेंस रखना सिखाते हैं। कई लोग क्या कहते, हमने लिख लिया ना, लिख लिया ना, बाबा ने जो कहा मैंने पॉइंट लिख लिया, याद क्या किया, मैंने लिख लिया, मेरी डायरी में नोट है। अरे डायरी में नोट है या मन में नोट है, ये बुद्धि में नोट है। इसलिए बाबा कहते बुद्धि में धारण करना। तो बाबा कहते हैं याद से तुम एवर हेल्दी बनेंगे। ये है धारणा की बात। लिखने से क्या फायदा होगा? ये तो सब विनाश हो जाएगा। परंतु कोई याद रखने के लिए लिखते हैं, वो भी ठीक है, कोई याद रखने के लिए भी लिखते हैं। जैसे कोई बात याद करनी हो होती है तो गांठ बांध देते हैं। आजकल तो नहीं करेंगे, आजकल क्या करते हैं, डायरी पे लिख जाते, आगे लिख जाते, टेबल पे कागज पे लिख जाएंगे। तो उस पहले जमाने में क्या करते थे, कोई बात याद करनी होती थी, माताएं क्या करती थी, अपनी चुन्नी या साड़ी के पल्ले को गांठ लगा देते थे, भाई लोग अपने रुमाल को गांठ लगा देते थे। तो बाबा कहते हैं जैसे कोई बात याद करनी होती है तो गांठ बांध देते हैं, तुम भी। अब कौन सी गांठ बांधोगे? तुम भी गांठ बांध लो शिव बाबा और वर्षे को याद करना। कौन सी गांठ बांधनी है? शिव बाबा और वर्षे को याद करना। ये तो बहुत सहज है। योग अर्थात याद। कहते हैं बाबा याद नहीं ठहरते, ऐसा कहते हैं बाबा को। नए नए आते ना वो एक ही बात करते हैं, और माताएं भी आती बोलती हैं बाबा याद नहीं ठहरती है, योग में कैसे बैठे? अरे लौकिक बाप को तो उठते बैठते चलते फिरते याद रहती है। बाबा कहते बाबा के लिए कहते हैं, लौकिक बाप के लिए थोड़ी कहेंगे। अरे लौकिक बाप की याद तो उठते बैठते चलते फिरते रहती है, तुम भी सिर्फ याद करो, बस बेड़ा पार है। बेड़ा पार कैसे होगा? केवल बाबा को याद करो, तुम भी सिर्फ याद करो, बस बेड़ा पार है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लादे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है स्वदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिराते रहना। स्वदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिराते रहना है। बेहद बाप की बेहद बाप को याद कर बेहद का वर्षा लेना, बेहद बाप को याद कर बेहद का वर्षा लेना है, पावन बनना है। दूसरा, किसी भी चीज के लालच नहीं कर, सब कुछ मिलता है तो बाबा कहते हैं किसी भी चीज के लालच नहीं करनी है, जो मिले उसमें खुश रहना है, रोटी टुक्कर खाना है, मीन्स रोटी जो भी मिलता है उसमें खुश रहना है, बाप की याद में रहना है। आज का वरदान, सर्व के दिलों के राज को जान, सर्व को राजी करने वाले सदा विजयी भव। सर्व के दिलों के राज को जान, सर्व को राजी करने वाले सदा विजयी भव। विजयी बनने के लिए हर एक के दिल के राज को जान, उसके दिल में क्या चाहता है राज को जान करके उसको मदद करो। सर्व विजयी बनने के लिए हर एक के दिल के राज को जानना है। किसी के मुख द्वारा निकलने वाले आवाज से उनके दिल के राज को जान लो तो विजयी बन सकते हो, लेकिन दिल के राज को जानने के लिए अंतर्मुखता चाहिए। जितना अंतर्मुखी रहेंगे उतना हर एक के दिल के राज को जानकर उसे राजी कर सकेंगे। राजी करने वाले ही विजयी होते। ऐसा नहीं है दिल के ऐसी ऐसी बातें हों, पता नहीं मैं क्या क्या बातें हो, बाबा कहते वो नहीं। दिल की बात मीन्स वो बाबा को याद करना और कैसे खुशी उमंग में रहना है। तो बाबा कहते हैं जितना अंतर्मुखी रहेंगे उतना हरेक के दिल के राज को जानकर और उसे राजी कर सकेंगे। राजी करने वाले ही विजयी बनते हैं। स्लोगन, वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है जिसमें जो भी फल डालेंगे वह फलीभूत अवश्य होगा। वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है जिसमें जो भी फल डालेंगे वह फलीभूत अवश्य होगा। आज का व्यक्ति इशारा टाइटल चल रहा है, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। सदा उमंग उल्लास में एक रस रहने के लिए जो भी संबंध में आते हैं, चाहे स्टूडेंट चाहे साथी, सभी को संतुष्ट करने की उत्कंठा हो। जिसको भी देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो। सर्व के गुणों का बल मिलने से सदा के लिए उत्साह एक रस रहेगा। गुणग्राही बनो, अब गुणों को देखते हुए भी नहीं देखो। गुणग्राही बनो, अब गुणों को देखते हुए भी नहीं देखो। अच्छा, ओम शांति शांति। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे। वैसे तो बाहर बोर्ड लगा हुआ है, आज 19 मई को लायंस क्लब ऑफ और ग्लोबल हॉस्पिटल की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप लगा गया जो सुबह 8:30 से दोपहर 2 बजे तक ग्लोबल हॉस्पिटल में रहेगा। इसमें केवल 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के भाई बहने रक्तदान कर सकते हैं, लेकिन रक्तदान ऐसे नहीं करते।